नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा, 8 जनवरी तक चलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात्रि आश्रय स्थल शुरू किया। दिल्ली यातायात पुलिस 10 जनवरी को ट्रैफिक चालान भुगतान और नोटिस की सुनवाई के लिए लोक अदालत का आयोजन करेगी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया और समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित कॉलेज छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के साथ होगी। भाषण की समाप्ति के बाद उनके अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर हिंदी और अंग्रेजी में रखी जाएगी। सत्र के दौरान प्रदूषण, पर्यावरण, शीश महल और जल बोर्ड से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और प्रशासनिक, तकनीकी तथा डिजिटल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री गुप्ता ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की गरिमा बनाए रखते हुए कार्यवाही के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी सत्र में विधायक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से आईपैड का उपयोग करेंगे, जिससे कार्यवाही अधिक पारदर्शी, दक्ष और पेपरलेस होगी। साथ ही श्री गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या लॉजिस्टिक बाधा उत्पन्न न हो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात्रि आश्रय स्थल शुरू किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से आयोजित इस स्थल का उद्देश्य बाह्य रोगी के लिए मुफ्त भोजन, कंबल और शौचालयों की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही इस पहल के माध्यम से भीड़भाड़ और रात भर लगने वाली लंबी कतारों की समस्या का समाधान होगा। विश्राम सदन सुविधा के बारे में बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने एम्स आने वाले सभी मरीजों को बिना रुकावट सेवाओं के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आने का आग्रह किया।
देखो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा सारे लोगों को जो एम्स आना चाहते हैं, प्लीज आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आइए, ताकि हम उनको सीधा ग्रीन चैनल में देख सकते हैं। नंबर वन, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आके कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको एडमिशन्स हो रहा है, अगर पेशेंट्स का अटेंडेंस के लिए भी अगर कुछ विश्राम सदन की जरूरत है, वो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, ऑनलाइन डैशबोर्ड है, उसमें आप उसको बुकिंग कर सकते हैं और उसका उपयोग ले सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य रेबीज के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग, प्रभावी निगरानी और तेज सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को मजबूत करना है। नोटिफिकेशन लागू होने के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को रेबीज संबंधित सूचनाओं को जल्द से जल्द संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को देना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेबीज पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि नोटिफाइबल डिजीज घोषित होने से शुरुआती पहचान, समय पर इलाज और रोकथाम सुनिश्चित होगा, जिससे दिल्ली को रेबीज मुक्त किया जा सकेगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने आज विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही संघ ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए मोर ब्रेल मोर एम्पावरमेंट नाम से एक संयुक्त ब्रेल अभियान भी शुरू किया है। यह अभियान इन्हें सशक्त बनाने और इन्हें समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव एस के रूंगटा ने कहा कि दृष्टि बाधित लोगों को समाज में शामिल करने में मदद करती है। इसके अलावा उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान महामान्यवादी आर वेंकट रमणी ने कहा कि ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समानता, शिक्षा तक पहुंच, न्याय और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करती है। ये दिन उन लोगों के लिए पहुंच और स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लुई ब्रेल द्वारा ब्रेल लिपि के आविष्कार की सराहना करते हुए कहा कि इस माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अवसर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री सिंह ने इन विद्यार्थियों के सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक भविष्य के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ब्रेल के महत्व पर बल दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ब्रेल केवल पढ़ने लिखने की एक प्रणाली नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता और सम्मान को बढ़ावा देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुलभ और समावेशी संचार को बढ़ावा देकर ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहां ज्ञान, अवसर और भागीदारी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आईटीओ स्थित छठ घाट पर यमुना क्लीनअप ड्राइव का निरीक्षण किया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की स्वच्छता अब केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यमुना सफाई अभियान को वैज्ञानिक और नियोजित तरीके से कर रही है। इसमें कचरा प्रबंधन, गाद हटाना, सीवेज ट्रीटमेंट और निगरानी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने यमुना को आस्था, संस्कृति और सभ्यता की जीवनधारा बताया और कहा कि इसका संरक्षण करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने नागरिकों से यमुना स्वच्छता अभियान में निरंतर सहभागिता बनाए रखने का आह्वान किया।
मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ कि आपने बहुत सुंदर तरीके से लगातार शहर से जुड़े हुए अलग अलग विषय और विशेष रूप से यमुना की सफाई के लिए आपके एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आप मुझे जो भी इन्फॉर्म करेंगे आई विल मेक श्योर कि आपको वो सामान सब पहुँचे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम समर्पण में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सचदेवा ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि ये आयोजन विद्यालय के संस्थापक जगदीश चंद्र अरोड़ा की स्मृति को समर्पित था। दिल्ली के वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी के वन क्षेत्रों में तेंदुए के दिखने को संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकार के निरंतर प्रयासों का सकारात्मक परिणाम बताया है। सोशल मीडिया पर तेंदुए का एक वीडियो जारी कर श्री सिरसा ने कहा कि लगभग 3 दशकों बाद दिल्ली में 10,082 एकड़ क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्राकृतिक आवासों को मजबूत सुरक्षा मिली है। मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों के कारण राजधानी में जैव विविधता लौट रही है और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार हो रहा है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह आज कीर्तिनगर में आयोजित वरिष्ठ नागरिक कल्याण बैठक में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया और उनके अनुभव साझा, सुझाव तथा आवश्यकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जनों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही श्री सिंह ने वरिष्ठ जनों का अनुभव को समाज की सबसे बड़ी पूंजी बताया। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर 10 जनवरी तक सुझाव दिए जा सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सेवाएं और चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए ये डिजिटल मंच बनाया है। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग के अनुसार ईसीआई नेट ऐप का परीक्षण, बेहतर मतदाता सेवाएं, मतदान प्रतिशत रुझानों की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचकांक कार्डों का प्रकाशन प्रदान करता है। इस ऐप का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आयोग ने कहा कि नागरिकों से प्राप्त सुझावों की जाँच की जाएगी और उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें शामिल किया जाएगा। ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म को इस महीने के अंत में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
अब 3 वर्ष से कम अवधि वाले स्टार्टअप भी अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का लाभ उठा सकेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभाग के 41वें स्थापना दिवस समारोह में नई दिल्ली में कहा कि अब नए स्टार्टअप भी पंजीकरण कर इस कोष का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार ने परमाणु क्षेत्र और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने उस वीडियो को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना, मोबाइल फोन, दोपहिया और चार पहिया वाहन जैसी वस्तुएं मुफ्त देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट के अनुसार प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस 10 जनवरी को चालान भुगतान और नोटिस की सुनवाई के लिए लोक अदालत का आयोजन करेगी। ये लोक अदालत पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, 30,000 साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार उन्हीं चालानों और नोटिस की सुनवाई लोक अदालत में होगी जो गत वर्ष 25 सितंबर तक न्यायालय में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई के लिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 अवैध अफ्रीकी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों प्रवासी नाइजीरियाई निवासी हैं और अवैध रूप से रह रहे थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे कई क्षेत्रों में हाउसकीपिंग का काम करते थे। पुलिस के अनुसार इस मामले की जांच जारी है और उन्हें निष्कासन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजधानी में आज सुबह के समय कोहरा छाया रहा, वहीं दिन में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा, 8 जनवरी तक चलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात्रि आश्रय स्थल शुरू किया। दिल्ली यातायात पुलिस 10 जनवरी को ट्रैफिक चालान भुगतान और नोटिस की सुनवाई के लिए लोक अदालत का आयोजन करेगी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। और समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंदराज सिंह विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर दृष्टि बाधित कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।